We are listening to his education library counseling class at one time recorded on 9th of June 2015, Sixth Ashtam verse number 4.
Om Agyanti Mirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि कोई और आए तो पीछे बैठ सके। तो चैतन्य शिक्षाष्टकम श्लोक संख्या 4। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वे। तो पिछली बार भी हमने यहीं से शुरू किया था और बता रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने 8 श्लोकों में सभी वेदों के सार को प्रस्तुत किया है। और वेदों का सार बताया जाता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत होता है वेदांत सूत्र, तो पहला जो उसका वर्स है सूत्र जिसे बोलते हैं, सूत्र का मतलब होता है जो कैप्सूल टाइप चीज़ मतलब छोटे करके लिख दिए। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अब ब्रह्म को के प्रति जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म का मतलब शास्त्रों में कई मुख्य रूप से भगवान के लिए है और आत्मा के लिए है, बट ये शब्द कई बारी शरीर के लिए भी और मन के लिए भी आया था, लेकिन मुख्यतः इसका आत्मा और भगवान से संबंध है। तो मतलब अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ो, और या फिर भगवान के लिए रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ो, अब शुरू करो। अब का मतलब अथात हो, अब मतलब कि अब मतलब जब आप ये पढ़ सकते हो, किस योनि में पढ़ सकते हो शास्त्र, मनुष्य योनि में, मतलब अब आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। तमसो मा ज्योतिर्गम, अंधकार से अब प्रकाश की ओर जाओ। अंधकार में रहते हैं, अंधकार मतलब अज्ञान, प्रकाश मतलब ज्ञान। तो अंधकार से किसकी तरफ बढ़ो, प्रकाश की तरफ। और सूत्र क्या बताते हैं वेद में कि मृत्यु में अमृत गमयो, मतलब मृत्यु से अमरता को प्राप्त कीजिए। समझ पा रहे? हम बार बार मरते हैं, बार बार जन्म होता है, लेकिन अब क्या करो, अब अमृतत्व को प्राप्त करो। तो इस प्रकार वैदिक शास्त्रों में, वेदांत में इस प्रकार के जो सूत्र हैं लिखे गए हैं, या इस प्रकार का वैदिक शास्त्र हमें ज्ञान देता है कि अब करो इस बात को। अब पे इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि अब हम पढ़ने लायक बन गए हैं, अब हम उस योनि में पहुंच गए हैं जहां से इन सब सब्जेक्ट्स को समझा जा सकता है या जीवन में उतारा जा सकता है। और जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, जिसके हाथ में ग्रंथ आया है, जो भक्तों के संग में आके सुन रहा है, तो मतलब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां से वो इन सब चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद इसको अपने जीवन में उतार सकता है। तो लक्ष्य निर्धारित करना होगा, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जिज्ञासा कीजिए ब्रह्म। लेकिन जो चौथा वर्ष है, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय, तो इसमें महाप्रभु ने बहुत सुंदरता से ना धनम, धन के विषय में बोला, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारा पूरा का पूरा जीवन इस धन के इर्द गिर्द ही घूमता है। धन की अधिकता और धन की कमी हमारे जीवन में मुख्य रोल अदा करती है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। इसलिए हमारा जीवन भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो पिछले प्रवचन में हमने समझा या सीखने का प्रयास किया कि धन वास्तव में एक किस्म का सेल्फ रियलाइज्ड, जो मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव डिवोटीज की बात कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा बर्डन है, क्योंकि हमने धन के नुकसान जाने। जैसे तीन दोष भी थे, बताए थे धन के, एक तो दान इत्यादि कर सकते हैं, धन के तीन गति बताई थी, दूसरा भोग और तीसरा नाश, विनाश जैसे बोलते हैं। तो ये धन इन तीन चीजों में काम आता है। तो जो भक्त हैं, प्रोग्रेसिव डिवोटीज हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर हैं, तो पूर्व जन्म के कर्मों पे आधार पर मिलने वाले जो लाभ हैं इस युग में धन के रूप में मिलते हैं। कहीं पर कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोग अभी आजकल कई जगह से फोन आ रहे हैं कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, इसमें करवा दीजिए, इसमें करवा दीजिए, क्या रैंक आई है, किसी का 35,000 है, किसी का 40,000 रैंक आई है, 13,000 है, किसी का 10,000। इतना पढ़ने के बाद 80-90-95% मार्क्स लाने के बाद भी डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। कितनी मेहनत करी बच्चों ने, उसके बाद भी मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल रहा या सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, और उसके बाद इतना पढ़ लिखने के बाद जब व्यक्ति एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है रिश्वत देकर, या उसके बाद एडमिशन लेकर खूब पढ़ने के बाद, तो वो फिर वो जॉब करता है उन लोगों के यहाँ जहाँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, अंगूठा छाप व्यक्ति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और वो इंजीनियर, वो MBA वहाँ पर 50,000 60,000 80,000 का पैकेज ले रहे। इससे हम लोग पढ़ाई को नकार नहीं रहे, मैं वैसे बता रहे हैं आजकल का जो सिस्टम चल रहा है ना, और ऐसे जो बिजनेसमैन हैं इनको अपने काम धंधे चलाने के लिए किन के आगे माथा टेकना होता है, पॉलिटिशियन से आगे कि सर हमारा ये काम करवा देना, ये फाइल आगे बढ़ा देना, तो वो बेचारे उधर माथा टेकते हैं। और ऐसे पॉलिटिशियंस अपने वोट के लिए, अपनी सीट के लिए किन की शरण में जाते हैं, वो जो स्कूल में कभी गए नहीं, जो बचपन से पॉकेट मारी है, चाकू ये सब करना लगे, तो ऐसे लोगों के इसमें जाते हैं कि भाई ये लोग पैसे लो, हमारे को वोट दिलवाओ, यहाँ के वोट दिलवाओ, या ये व्यक्ति मेरे सामने आया इसको उड़वा दो, तो किन की शरण ग्रहण करते हैं, चोर डाकुओं की। और ये सारे के सारे किसकी शरण ग्रहण करते हैं, जो स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए और वो साधु बन गए। तो हमारा काम निकल जाए तो इसलिए चोर भी वहाँ पर माथा टेकता है, पॉलिटिशियन भी वहाँ माथा टेकता है, बिजनेसमैन भी वहाँ माथा टेकता है, और स्टूडेंट भी कहता है भाई उन्हें पास हो जाओ, अच्छी जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार सारा का सारा चलता किसके इर्द गिर्द है, धन के इर्द गिर्द। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये जो धन है एक भक्त के लिए वास्तव में क्या है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है अगर उसका वो सही इस्तेमाल नहीं जानता तो। नहीं तो ये भोग में जब लगेगा तो भोग का मतलब है फिर ये हमसे बुरे काम अधिक करवाएगा, अच्छे काम कम करवाएगा। अगर कोई भक्त नहीं है तो, यस सात्विक वृत्ति का व्यक्ति नहीं है तो ये धन बाय फोर्स व्यक्ति से बुरे काम करवाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो ऐसे समय पर उसको इस्तेमाल करना चाहता है धन से, क्योंकि अब धन है उसके पास। और फिर तीसरा विनाश, अर्थात जब उल्टे सीधे कामों में लगेगा, उल्टी सीधी चीज़ें खाएगा, उल्टा सीधा इस्तेमाल करेगा तो फिर वो नाश का कारण होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भक्तों के जीवन में वास्तव में चंचला लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, उनके पास वो लक्ष्मी होनी चाहिए जो नारायण की सेवा में लगती है। तो व्यक्ति अगर भक्त है, जैसे पूर्व जन्म के आधार पर धन इत्यादि प्राप्त हो रहा है, आसानी से प्राप्त हो रहा है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, 7-8 घंटे में उसको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्मज, तो उसको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। किसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं? जैसे जब रूप सनातन इत्यादि ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसका सही इस्तेमाल किया, जितनी भी अशर्फियाँ उनको मिली थी, सोना इत्यादि मिला था, 50% उन्होंने लगा दिया सामाजिक कार्यों में और दूसरों की मदद में, वैष्णवों की सेवा में, और 25% अपने पास रखा। तो ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारी जो मानसिकता है जो धन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो हमसे इवन पाप करवाती है, हमने देखा है कई एक बार एक बच्चा था व्यक्ति, उसको ना एक बहुत बड़े यहाँ राजा के यहाँ चोरी करने की वजह से उसको फांसी दी जा रही थी। तो पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी क्या इच्छा है, उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ और उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो माँ आई, कान में कुछ कहने लगा तो उसने माँ का कान पकड़ लिया और जोर से काट डाला, तो बड़ी खूनम खून हो गया, लहूलुहान हो गया सब कुछ। पूछा भाई ऐसा क्यों किया, तो उसने अपने कहा माँ के सबके सामने कि आज मैं इस पनिशमेंट का जो हकदार हूँ वो मैं अपनी माता की वजह से मैं कारण मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चोर नहीं बनता, अगर बचपन में जब मैंने छोटी चोरी की थी और जब मैंने घर में आके वो चीज़ दिखाई थी और माता मुझे हंसकर मुस्कुराकर ना ट्रीट करती और शाबाश ना बोलती या डांटती नहीं, मतलब डांटा नहीं, तो इसने मेरे हौसले क्या कर दिए, बुलंद कर दिए, और तब से मैं कई कई प्रकार की चोरियाँ करने लगा। तो आज जो मैं इतनी बड़ी चोरी करने के इल्जाम में फंसा हूँ और जिसका मुझे मृत्युदंड मिल रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है कि उन्होंने मुझे पहले नहीं समझाया सिखाया। तो इस प्रकार जो ये धन है इसका आना बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है हमारे परिवारों में भी होता हो, अगर हमें लगता है कि हाँ कहीं से 1 नंबर का आया, 2 नंबर का आया, तो हमको हम सहयोग करते हैं कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, सभी कमा रहे तो हमें भी कमाना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है। तो बड़ा सजग रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, और भक्त को उसका इस्तेमाल आना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने जब धन की बात करी तो ये धन शब्द, मैं उस दिन बात कर रहा था किसी के, इस पर तो कितने प्रवचन हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन से का केंद्र बिंदु है ये, और भक्तों के जीवन में भी कितना बड़ा ऑब्स्टेकल है इसकी वजह से। और दूसरा न जन्म, जन्म शब्द से महाप्रभु का क्या अभिप्राय है, अच्छा जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, या सुंदर फीचर्स के साथ जन्म। ये जो व्यक्ति इस जीवन में अपने आप को इन्फीरियर समझता है या कुछ कमी पाता है अपने में, तो उसकी हमेशा हृदय में एक इच्छा बनी रहती है, क्या? हाँ जी, हाँ, जो कमियां इस जन्म में रह गई वो अगले जन्म में पूरी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके हृदय हमेशा इच्छा बनी रहती है, मंदिर में जाता है, भगवान के पास भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज सुबह दोपहर शाम भक्तों के साथ या भौतिक जगत में जब वो समाज में आता है तो कहीं ना कहीं उसको वो इन्फीरियरनेस फील होती है, वो कमी उसको कहीं ना कहीं कुरेद देती है कि अभी तुम्हें अंदर की कमी है, शायद इस वजह से तुम्हें इतना मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से भी व्यक्ति क्या चाहता है कि अगला जन्म मेरा अच्छा हो, ऊंचे परिवार में हो, ऊंचे कुल में हो। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। अज्ञानतावश व्यक्ति अपने आप को देह मानता है, फिर देह मानने के बाद किसी न किसी जाति का समझता है और फिर रंग और रूप इत्यादि पर भी वो केंद्रित रहता है। इस वजह से उसकी कुछ इच्छाएं हृदय में हमेशा बनी रहती हैं, चाहे वो भक्ति में भी आ जाए और वो सुन भी ले, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश, सुन भी ले वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इच्छा बनी रहती है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी शरीर के अंदर कमी है तो कहीं ना कहीं उसको समाज में जब कभी तिरस्कार किया गया या उसका उपहास उड़ाया गया या लोगों ने उसे पसंद नहीं किया तो तब ऐसे विचार उसके हृदय में आते हैं कि यस अगला जन्म हो तो अच्छा हो। और ये इच्छा क्योंकि हृदय में बनी रहती है इसलिए जब वो जप तप इत्यादि करता है तो कहीं ना कहीं इच्छा बरकरार रहती है। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में भी इच्छा बरकरार थी और उन्होंने भगवान को प्रसन्न तो कर लिया तपस्याओं से, लेकिन भगवान को उनकी पहले वो इच्छा पूरी करनी पड़ी जो इच्छा वो लेकर चले थे। तो महाप्रभु हमें सचेत कर रहे हैं कि जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में आए अर्थात भक्ति करें, नवदा भक्ति के अंगों का पालन करें, तो हमें प्रयास करना चाहिए अन्य अभिलाषशिता शून्यम ज्ञान कर्मानु, कि हम लोगों को इस संसार की जो भौतिक इच्छाएं हैं जिसे अनर्थ कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हो सकता है यहाँ के लोग उस चीज़ को बोलते हैं हाँ ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है, सुंदर होना बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा शरीर होना बहुत ज़रूरी है, ऊंचा पोस्ट होना बहुत जरूरी है, इस समाज के वो है। लेकिन आध्यात्मिकता में इसको अनर्थ कहा गया है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, आत्मा का भगवान अर्थात परमात्मा से जुड़ने में इसका कोई वो नहीं है इस्तेमाल। तो इस प्रकार जो ये ऊंचे जन्म की ऊंचे कुल में पैदा होने की जो है कामना रहती है उसका एक कारण तो ये भी है कि हो सकता है जो शरीर हमें प्राप्त है उसमें किसी कमी के कारण, एक दूसरा हमारे समाज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऊंचे जन्म की लालसा बनाती है हृदय में। एक अपने अपने धन की बात भी होगी, जो व्यक्ति निर्धनता से जीवन जीता है और समाज में वो देखता है कि मैं वो अपनी सब इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहा, या अपने बच्चों की, अपनी बीवी की वो इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं, तो पहले तो प्रयास करता कि इसी जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं वो सब पूरा कर सकूं। और अगर प्रारब्ध में उसके ऐसा नहीं है तो क्या करता है वो, फिर कामना रखता है हृदय में कि अब अगला जन्म हो भगवान तो ऊंचे कुल में हो, अर्थात वहां जहां धन मुझे मिल सके, धन की प्राप्ति हो सके। तो एक ये कारण भी है। और क्या कारण है, हम जिस वातावरण में शहर में जी रहे हैं तो शायद हो सकता है रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को उन सब चीजों का सामना ना करना पड़ता हो जो अभी भी शहर के कोने में, गांवों में या और इंटीरियर्स में जाएं तो वहां पर लोगों को करना पड़ता है, और वो क्या है, जातीय भेदभाव। हम ब्राह्मण हैं, और उन ब्राह्मणों में भी कौन से ऊंचे कुल वाले ब्राह्मण, और ब्राह्मण क्या सोचते थे कि आप सब बाकी लोग कौन हो, सब निकृष्ट हो, चाहे वो क्षत्रिय भी क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत में कथा आती है बड़ी सुंदर, जिसमें एक रानी है, एक उसकी रानी की, जो राजा है, राजा की बेटी है, और राजा के जो गुरु हैं एक उनकी बेटी है, शर्मिष्ठा, और नाम इस तरह इनके देवानी और शर्मिष्ठा, वो दोनों सहेली हैं, और आपस में उनका झगड़ा हो जाता है, कई बड़ी लंबी स्टोरी है ये, बहुत लंबी स्टोरी है। तो उसमें जब वो आपस में लड़ती हैं तो उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब बोलती हैं। राजा की लड़की कहती है तुम हो कौन, हाथ फैला के तो हमारे सामने आते हो ना, अपने गुरु के बारे में ऐसे करते हैं। और फिर गुरु भी भड़क जाते हैं, कहते हैं वो कौन होता है, क्षत्रिय है क्या, ये हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, हम लोग अगर भी शराब दे तो खत्म हो जाए। तो हर व्यक्ति अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंगली लड़ता है। तो ये जो पुराने समय में या अभी भी गाँवों इत्यादि में जो ये कास्टिज्म था, ये इतना बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि लोग इसके चक्कर में, कई लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। आप अगर ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, क्षत्रिय कुल के नहीं थे, तो अगर, और अगर आपने शूद्र होकर किसी कुएं से पानी निकाल लिया ऊंचे कुल की, तो आपको सड़कों पे नग्न घुमा जाएगा, आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको मतलब किसी मंदिर में प्रवेश कर गए तो मंदिर की धुलाई होगी। हाँ जी, किनको, हरिजन, हमारे एक नेता हुए हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को नाम दिया हरिजन, वो लोग हरिजन, और बाकी लोग सभी हरिजन हैं। लेकिन आज भी बता रहे हैं कि उड़ीसा में या कई क्षेत्रों में आज भी अगर आप चले जाएं मंदिरों में धुलाई होती है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भी आज भी लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। तो उसमें चलो हिंदू चाहे किसी भी जाति का वो तो जा सकता है, लेकिन हिंदू के अलावा अगर कोई और जाति का है तो वो नहीं जा सकता। अगर कोई चला गया तो पूरे मंदिर की धुलाई होती है, हम लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता। कई बार हमें सोचते हैं विदेशी, हमको तो एक ही दिन में 3 बार रोक लिया जगन्नाथ मंदिर में, और नाम गोत्र वगैरह सब पूछा, फिर अंदर जाने दिया, और अंदर जाने के बाद भी सब यूं घूर रहे थे मुझे से, कि ये है विदेशी है ना। तो जो थोड़ा सा रंग उसको, वैसे में कोई कश्मीर का पहुंचे तो उसको तो बिल्कुल ना जाने दे। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी भी ये मानसिकता बनी हुई है। कई कई क्या कहते हैं उसको, समाजवादी लोग आए, राजा राम मोहन राय और पता नहीं कौन कौन, जिन्होंने कोशिश करी इसको खत्म करने की, लेकिन आज भी ऐसा चल रहा है। तो जिन लोग, क्योंकि मान सम्मान की, पूजा प्रतिष्ठा की कितनी बड़ी कामना है, ये हम देख सकते हैं जब किसी को तिरस्कार कर दिया जाए भरी सभा में, तो उसके हृदय में एक ही इच्छा रह जाती है, क्या, कि मैं ऐसे कुल में क्यों पैदा हुआ, क्या मेरी गलती थी, या ये मुझे इस प्रकार क्यों तिरस्कार कर रहे हैं। अगर अब अगला जन्म हो तो ऊंचे कुल में जन्म, मैं ये समझाने का शब्द प्रयास कर रहा हूँ, जन्म शब्द का, चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है, तो ऊंचे जन्म की जो लालसा है, हो सकता है शहरों में, ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में हो सकता है ऊंचे जन्म की या कलर की बात ना करते हैं लोग, केवल कुछ एरिया में, लेकिन ये आज भी लोगों का एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने, हम अभी कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो जब हमने बताया वहां पर, तो एक लेडी ने प्रश्न किया, भाई ये तो कहा, हमने बताया कि चतुर्वर्णा माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, भगवान ने कहा कि हमने ये बनाए हैं विभाग वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग। तो उसका प्रश्न था कि भाई ये तो इसका मतलब कि कास्टिज्म और ये सब और शूद्र जो ऐसे काम करते हैं, मतलब ये तो बड़े गलत हैं, आज के लोग समाज में ऐसा बोलते हैं, शहर के लोग हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज़ें गुणों के हिसाब से कि कौन व्यक्ति के क्या कर्म है, उनकी क्या वृत्ति है, उसके अनुसार बनाए हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवे द्विजा वेद पाठात भवे विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कलयुग में तो सभी लोग जन्म से शूद्र हैं, लेकिन शूद्र होने के बाद इनके जो गुण हैं, इनके जो वृत्ति पर कार्य हैं, इसके आधार पर यह देखा जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, यह क्या है। संस्कारात भवित, संस्कार जब इत्यादि होते हैं तो व्यक्ति द्विज बनता है, वेद पढ़ने से वो विप्र बनता है, और जो ब्रह्म को जानता है या जानने का प्रयास कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे देश में भी बहुत सारे सिस्टम चले कास्टिज्म को खत्म करने के लिए। जो अभी शब्द आपने इस्तेमाल किया, उन नेताओं ने हरिजन शब्द का नाम दिया, और कहीं पर इकट्ठे हो जाते थे अगर ऊंची नीची जाति के तो बवंड मच जाता था। आज भी विदेशों में अगर आप जाएं तो काले और सफेद का झगड़ा है। पुलिस में अगर सफेद चमड़ी के लोग हैं और वो किसी काली चमड़ी के लोगों को कहीं देख लें तो गोली से बात करते हैं, और फिर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े बड़े उनको उनके ऊपर वो एलिगेशन लगाए जाते हैं और पकड़ा जाता है, उनको कोर्ट में केसेस चलते हैं। तो हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना गहरा इसका प्रभाव है हमारे हृदयों में। जब धन के या रूप के या और कोई मेंटल डिसेबिलिटी या किसी और कारणवश जब हम ये देखते हैं कि हमें इस प्रकार का शरीर मिला जिसमें कुछ कमी रह गई, तब हमारे हृदय में एक इच्छा बन जाती है क्या कि मेरा जन्म ऊंचा ऊंचे परिवार में होना चाहिए। और फिर जिन लोगों को इस प्रकार नहीं मिला, जिन्हें अच्छा मिला, सही शक्ल सूरत मिली, सही पढ़ाई मिली, सही कुल मिल गया, उनको इस बात का गुरूर था कि हमें अच्छा मिला है, तो उसके वो अलग अनर्थ पैदा हुए। कृष्ण ने गीता में बोला कि ये जो चार वर्ण और आश्रम में बनाए हैं ये गुण और कर्म के हिसाब से है। जो ब्राह्मण है ये जो वर्ण आश्रम है, ये जो ऊंचा वर्ण है, इसका कुछ काम, इसके वृत्ति पर कुछ कार्य बताए गए थे, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज थी इनकी, कि उनको वेदों को पढ़ना और पढ़ाने का काम था उनका, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और कराना। इस कलयुग में क्या है यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन खुद भी करना और दूसरे से करवाना, वेद पढ़ना, वेदों का सार हम पढ़ रहे हैं, वेदों का सार हम पढ़ रहे हैं, और उन वेदों के सार को दूसरों तक पहुंचाना, समझ पा रहे हैं? तो ये ब्राह्मणों का काम था, और क्षत्रियों को गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना कि राज्य कैसे चलाना है, ताकि मासेस में बड़ी बड़ी संख्या में राजा लोग क्या कर सकें, जनता का फायदा कर सकें आध्यात्मिक दृष्टि से। तो समाज को दिशा देने के लिए यह वर्ग काम आता था, और जो सही ब्राह्मण थे या सही ब्राह्मण जो होते हैं वो कभी भी देह के अनुसार पंडित बोला गया ऐसे लोगों को। भगवद गीता 5:19 में श्लोक है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनी चैव शपाके चा पंडितः समदर्श। जो ये ब्राह्मण ये जो पंडित हुआ करते थे, इनका इनके इनके कुछ गुण बताए जाते हैं। ये विनयता इनका सबसे बड़ा गुण था, और ये संपन्न होते थे विद्या से, विद्या इनके जीवन में कर्मों में होती थी, तो विद्या विनय संपन्न संपन्न रहते थे, ब्राह्मणे गविहस्तनी, तो ये ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ते में, सिद्ध पुरुष में, हरेक के अंदर आत्मा का दर्शन करते थे, परमात्मा का दर्शन करते थे। ये जानते थे कि ये सब क्या है, जो शरीर हैं इनके अंदर परमात्मा का वास है, विद्या से संपन्न है। तो शरीर के रूप में नहीं देखते थे कि काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये नाटा है, ये पतला है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये धनी है, ये गरीब है, नहीं। क्या है पंडित की सबसे बड़ा गुण, वो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। लेकिन व्यवहार में उसको मालूम है किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। मतलब जो ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो कुत्ते को प्रणाम नहीं करता है, वो कुत्ते के साथ वो दूरी बनाए रखता है, ब्राह्मण को प्रणाम करता है, बात समझ रहे। लेकिन ये जानता है कि सबके हृदय में क्या है, परमात्मा का वास है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में जब कपिल महाराज अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो पंडित उस स्तर पर नहीं है जहां वो सबके हृदय में परमात्मा देख सके और वो भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना कर रहा है, लेकिन जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसको तिरस्कृत कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, उसको निकृष्ट समझ रहा है और यहां पर मेरी आरती कर रहा है, तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति बुझी हुई अग्नि में, राख में क्या कर रहा है, आहुतियां डाल रहा है। सारे मंत्रों के साथ आहुति डाल दी यज्ञ कुंड में, लेकिन आग नहीं जल रही, तो उसका कोई फायदा नहीं। क्या कर दिया उसने, क्या कारण, कि वो ब्राह्मण या वो पंडित जो है विद्या विनय संपन्न नहीं है। जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न है, जो पंडित के स्तर पर है, क्या करता है, मातृवत परदारेषु, वो हर स्त्री को क्या देखता है, अपनी माता के समान देखता है। पर दरवेशु लोष्टवत, और दूसरों का जो धन है उसे मिट्टी समझता है, लोष्टवत, कोई काम की नहीं है, मिट्टी है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी लोगों को अपने समान समझता है। किस प्रकार, जैसे डीलिंग्स में हमको जो अच्छा लगता है, जिस प्रकार का सम्मान मैं चाहता हूं, जिस प्रकार का व्यवहार मैं चाहता हूं लोग मेरे प्रति करें, उसी प्रकार का लोगों को देता है। या पश्यति साहब पंडिता, इस प्रकार जो देखता है या इस प्रकार का जो व्यवहार लोगों के साथ करता है वो क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि वो ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा है और उसका क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है तो नुकसान है। जो किया गया पुराने समय में, इस कलयुग में जो ब्राह्मणों का ह्रास हुआ या जो उनकी मेंटालिटी जिस प्रकार चेंज हुई, इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ श्राप उनको मिले, अगर आपको याद होगा जब प्रजापति इत्यादि और शिव के जो लोग आमने सामने हुए भागवतम में, तो खूब आरोप और प्रत्यारोप चला, खूब श्राप इत्यादि चले, तो उसी समय इस तरह के श्राप दिए गए। पार्वती ने भी श्राप दे रखे हैं, लक्ष्मी का भी सुना है आता कि श्राप दिया उन्होंने ब्राह्मणों को कि ये जो है मांगकर खाएंगे, लालची और लोभी होंगे, पवित्रता खत्म हो चुकी होगी, ये जो श्राप स्वरूप देके तुरंत कर देते थे, आजकल कुछ नहीं होता, कितने बोल लूं, पवित्रता खत्म हो गई, धन धन के लोलुप, धन के उसमें आ गए, और इस प्रकार उनकी जब मेंटालिटी खराब हुई तो उन्होंने अपने आप को समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित कर दिया और डीलिंग्स में दूसरों को निकृष्ट समझने लगे। मेंटालिटी क्योंकि खराब थी, दूषित थी, इसलिए राजाओं को भी या जो ज्ञान इत्यादि देते थे उसके पीछे होता था कि मुझे कितना दान और दक्षिणा मिल जाए और कितना मैं अपने पॉकेट में डाल लूं, और फिर उसका क्या करते थे, भोग विलास, कास्टिज्म शुरू हो गया, ये गांव हमारा, ये कुआं हमारा, ये मंदिर हमारा, तुम निकृष्ट, तुम इस छोटी जाति के ब्राह्मण, हम ऊंची जाति के ब्राह्मण, और बाकी को तो निकृष्ट समझना ही समझना। तो इस प्रकार की घटनाओं से समाज में क्या रहा, हमेशा कलह। सारी जातियां, सारे लोग जो हैं दुखी और परेशान रहने लगे, और ये ब्राह्मण लोग, क्योंकि क्षत्रियों ने देखा ये हमसे पैसा तो लेते हैं, डोनेशन तो लेते हैं, लेकिन खुद पे इस्तेमाल करते हैं, इससे बढ़िया इन ब्राह्मणों से क्या आज्ञा लेनी, खुद ही संभाल लेते हैं सब कुछ। तो जब राजाओं के ऊपर से ब्राह्मणों का हाथ हटा तो उन्होंने भी इंद्रिय तृप्ति शुरू कर दी, टैक्सेस लेने लगे ज्यादा से ज्यादा, लोगों को निचोड़ने लगे, दया खत्म हो गई। फिर वैश्यों को क्या लगा कि राजा तो हमसे छीनने लगे हैं और भोग विलास करते हैं, खुद तो ब्राह्मण की सुनते नहीं है, तो चलो क्या करें, टैक्स बचाओ, सीए रख लिए। है ना जी, तो उन्होंने फिर टैक्स की चोरी शुरू करी। फिर टैक्सेस की चोरी शुरू हुई तो खुद खाना पीना शुरू किया, बचाना शुरू किया, तो शूद्रों को लगा भाई इन तीनों की सेवा करके फायदा क्या है, ब्राह्मणों की क्षत्रियों की, ये तो भोग विलास में लगे हुए और ये टैक्स बचा रहे हैं और हमें दमड़ी नहीं देते। तो उन्होंने क्या करा, चोर बजारी ना डकैती ये सब शुरू किया कि लूटो इनको, मारो इनको। तो पूरा का पूरा सिस्टम चौपट हो गया। और इन सब सिस्टम की भगवान ने इसलिए रचना की थी ताकि धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात रिलीजियस प्रिंसिपल्स का पालन करते हुए, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में लोग कर्म करते हुए, फिर क्या करें, अर्थ का उपार्जन करें लेकिन धर्म के अनुकूल। अर्थ आएगा तो धर्म हुआ, अर्थ हुआ, लेकिन ये कनेक्टेड रहता था भगवान से, वैदिक शास्त्रों से, और साथ में क्या होता था, काम अर्थात इंद्र तृप्ति की जो रेगुलेटेड वे में जो छूट मिली हुई है शास्त्रों में, विवाह इत्यादि करना और फिर संतान इत्यादि उत्पन्न करना, तो वो रेगुलेटेड स्टाइल में करें। धर्म हुआ रिलीजियस प्रिंसिपल्स को जानना, अर्थ हुआ कि काम धंधा करना धार्मिक अनुष्ठानों के अकॉर्डिंगली या नियमों के अनुसार, और फिर जो अर्थ प्राप्त हुआ उससे फिर क्या करना, जो हमारी इच्छाएं उसे पूरा करना। और इस प्रकार उन इच्छाओं को पूरा करने के बाद अपना धर्म अर्थ तक पहुंचे, काम हुआ, अब मोक्ष की तैयारी करना। तो इसके दो तरह से हुए सिस्टम, एक तो हुआ धार्मिक ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करना विद कृष्णाइन सेंटर, धर्म का पालन अर्थ उपार्जन कृष्ण सेंटर में है, काम अर्थात संतान इत्यादि उत्पन्न करना, तो उसके बीच में केंद्र बिंदु भगवान, गर्भधारण संस्कार इत्यादि कर बच्चों को सारे संस्कार देकर, और फिर मोक्ष की तैयारी करना कि ये संसार जो है, जो अर्थ को कमाते हुए जो या काम इत्यादि करते हुए जो कंटैमिनेशन हमारे ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से हम लोग अपने आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य भूल गए, उसको फिर से प्राप्त करना अर्थात मोक्ष की तैयारी करना। तो ये दैवी वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं हुआ, या इसके जो था धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरे ढंग से पालन नहीं हो पाया, तो लोगों ने इसको उसका परवर्टेड स्टाइल शुरू किया, धर्म का पालन किया लेकिन कर्मकांड धर्म का पालन किया कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ऊंचे जन्म में, ऊंचे कुल में जन्म मिल जाए, यहां पर ज्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते तो स्वर्ग में जाके करें ऊंचा जन्म, अच्छा जन्म, इस बार सकल सूरत अच्छी नहीं मिली, अगले जन्म में अच्छी मिल जाए, इस बार धन धान्य ठीक नहीं था, अगली बार धन धान्य मिल जाए, मैं क्या ऐसे रिचुअल करूं, क्या ऐसे पूजा अनुष्ठान करूं, किसको खिलाऊं जिसकी वजह से मुझे अब अगले जन्म में, इस जन्म में इस प्रकार की चीजें प्राप्त हो जाएं। तो धर्म का पालन हुआ लेकिन रिचुअल और अनुष्ठान का पालन किया, उसके पीछे इच्छा थी ऊंचा कुल इत्यादि, अर्थ कमाया गया, फिर वो अर्थ क्या हुआ, अनर्थ हो गया, अर्थात किसी भी तरह से ये केन प्रकारेण धन जो है अपनी जेब में निवेश याद कि किसी भी तरह से ये केन प्रकारेण धन कमाओ बाय हुक एंड बाय क्रुक, तो उसके बाद उसका फिर इस्तेमाल करो, फिर किस में इस्तेमाल करें, इंद्र तृप्ति में, गलत कर्मों में, और इस प्रकार अपना नुकसान होना शुरू हुआ। फिर मोक्ष नहीं, फिर मोक्ष तो भूल ही जाइए, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष कहाँ मिलेगा? तो इस प्रकार भ्रमित हुए लोग। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म, जन्म नहीं चाहिए ऊंचा। क्यों नहीं चाहिए? कि जो प्रोग्रेसिव डिवोटीज भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन इत्यादि करने लगे, उन्हें जीवन का लक्ष्य पता चल गया। अब वो ना तो, जो महाप्रभु ने कहा गोपी भरतु पद कमल दस दास दास अनुदास, कि ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, मैं इस प्रकार का इस जन्म में भी कुछ नहीं चाहता, और मैं ये नहीं चाहता कि अगले जन्म में हो जाए कुछ, ठीक है ना। मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना मैं वानप्रस्थ, ना मैं सन्यासी, मुझे इस प्रकार की डेजिग्नेशन से डेजिग्नेट मत करो, और मैं होना भी नहीं चाहता। गोपी भरतयो पद कवल दास दास अनुदास, जो गोपियों का भरण करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का के दासों के दासों का मैं दास बनना चाहता हूं, यह पोजीशन मुझे चाहिए। लेकिन यह पोजीशन तो बहुत ऊंची है, देखने में नीची है। ऊंची इसलिए कह रहे हैं कि इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। कैसे होगा कि हम लोग अपने को बाहरी आवरण वाली इस संसार में प्राप्त शरीर रूप पूजा लाभ प्रतिष्ठा से अपने को कैसे हो सकता है कि हम जोड़कर ना देखें? तो इसको सीखना है, इसको करना है। तो शुरुआत महाप्रभु ने करी चेतो दर्पण मार्जनम से। तो वहां से जब इसकी शुरुआत होती है तो हम इन इन स्तरों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि महाप्रभु ने ये गोल सेट किया, हमारा स्वरूप बताया, असली स्वरूप जिसे बोलते हैं जीव हेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अभी तक इससे पहले दास की स्थिति कहीं पर भी किसी को पता नहीं थी, हर व्यक्ति अपने आप को बॉस ही समझता था और ऊंचे कुल में और ऐसी जगहों में प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ये जो जन्म का जो हमारे बीच में जो इच्छा बनी रहती है, जो हमने कारण बताया जिनकी वजह से, तो भक्त को चाहिए वो इस प्रकार की इच्छाएं समाप्त कर दे हृदय से। देखिए भगवान की योजनाओं को हम नहीं समझ सकते कि क्या योजना है। पिछले प्रवचन में हमने जब बात करी कि जड़ भरत महाराज किस स्तर से आकर हिरण के कुल में जन्म लिया है ना, तो भारी दृष्टि से लग रहा है कि एक व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर था भक्ति के, उसके बाद भी हिरण मिला, हिरण के बाद भी वो कथा सुनते रहे, तो फिर जब जन्म हो तो एक ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन डम एंड डीफ की तरह एकदम जड़वत। तो देखने में लग रहा है ये क्या है, एक ऊंची इतनी अच्छी भक्ति करने वाले के साथ भी ये हो रहा है। लेकिन भगवान की क्या योजनाएं थी? कि भगवान चाहते थे जो इसका थोड़ा सा रह गया खाली, भक्ति का जो पूरा होने में जो थोड़ा सा प्रेम तक पहुंचने में जो स्तर रह गया था, बस केवल वही तो पूरा करना था, तो उसको इस प्रकार का शरीर दिया। और जिस प्रकार का वो आचरण पेश करते थे, आप सोचिए, जैसे गूंगे बहरे की तरह चलना, कुछ भी मिल जाए खा लेना, कपड़ों का कुछ अता पता नहीं, तो अगर ऐसे व्यक्ति को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? पागल। अब कोई व्यक्ति पागल से शादी करेगा? पागल की ओर आकर्षित होगा? कहीं धन पड़ा होगा तो उसको कोई लेना देना है? धन के आगे से भी चला जाएगा तो उसको लोग कहेंगे बड़ा पागल है, धन नहीं देखा इसने। भाई धन तो वो देखेगा जिसको अभी धन के बीच में, धन जिसका केंद्र बिंदु है जीवन का, उसका केंद्र बिंदु धन नहीं है, कृष्ण है। लेकिन क्योंकि हमारा धन है तो हम उससे व्यक्ति को पागल बोलते हैं। तो बाहरी दृष्टि से देखने में लग सकता है कि ऐसा शरीर नहीं मिला, इतनी भक्ति करके भी क्या हुआ, ऐसा जीवन मिल गया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, डव एंड डीफ क्या फायदा, जड़वत रहता है। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है कि वो बस अपना ये छोटा सा जो उसका कोर्स रह गया वो फाइनल करे और मेरे धाम को आ जाए। भगवान की नजरों में तो थोड़ा सा रहता है ना। उसी तरह जब कभी हम जैसे भक्तों को लगे अगर, अरे मेरे परिवार में ऐसी संतान हो गई जो थोड़ा सा मेंटली रिटायर्ड है, या मैं खुद थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ, या मुझे रूप अच्छा नहीं मिला, यदि थोड़ी सी कमी रह गई, या मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए या बहुत जल्दी उड़ गए, या मैं ढंग से चल नहीं पाता, या मैं एजुकेशनली बहुत अच्छा नहीं हो पाया, या मेरा फिगर जो है बहुत अच्छा नहीं था, समझ रहे, या ये कमी रह गई, आंखों की कमी रह गई, समझ पा रहे हैं बात को जो समझा रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाया, मैं बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास तो इतनी अच्छी डिग्री है, या मैं थोड़ा सांवला हो गया, या मैं गोरा ज्यादा हो गया, या मेरे पे धन बड़ा कम था इस बार, तो इस प्रकार की जो ये भौतिक क्या बोलते हैं, ये जो कंटामिनेशन बोले, क्या बोले शब्द को, या डिसेबिलिटीज हैं जो भौतिक रूप से देखने में जो कमियां हैं, भक्तों के लिए ये वरदान का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? ये वरदान बन जाती है उनके लिए। इस भौतिक जगत की ऑकवर्ड पोजीशन या डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति अगर भक्ति में आ जाए तो वो उसके लिए क्या बन जाती है? वरदान बन जाती है। डेफिशिएंसी जो भी है शरीर के अंदर उसकी, वो उसके लिए वरदान बन जाती है। कैसे वरदान बन रही है? कि ऐसे व्यक्ति से लोग ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, लोग उसको जो है, अगर वो भक्त बन गया तो वो बड़ा खुश है कि मेरे पास दो भक्त की रोटी है, मेरे को चैन की नींद है। वो हो सकता है मेरे को ये बोले, देखो मैं तो गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये पैदल चल रहा है, बट मैं पैदल चल के खुश हूँ क्योंकि मेरी चार माला ज्यादा हो जाती है। हमारे एक भक्त हैं, उनके परिवार में दो बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चे जो हैं, धन बहुत है लेकिन दोनों बच्चे दिमागी हालत से माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया उनका। वो दोनों डिवोटीज भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने कभी ऐसा फील करा तो हो सकता है मन में, लेकिन प्रेजेंट नहीं किया कभी किसी के सामने, एक्सप्रेस नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या मतलब है ऐसा क्यों किया भगवान ने, हम तो इतनी भक्ति करते हैं। लेकिन हम देखते हैं बच्चे मंदिर आते हैं, माथा टेकते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, दो चार माला रगड़ रगड़ के कर लेते हैं, वो बच्चा किसी से आकर्षित नहीं हो रहा अननेसेसरली, किसी रूप से, किसी धन के 1,000 के नोट से, 500 के नोट से, उसको एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, घर में आराम से दो की रोटी मिल रही है बढ़िया, उसको कोई एजिटेशन नहीं है अननेसेसरली, जिन चीजों से हम विचलित होते हैं उनके लिए नहीं है वो। और सबसे खतरनाक चीज जो हमसे होती है और उनसे नहीं होती, वैष्णव अपराध है ना जी। हम तो कहने की चर्चा कर ही लेते ना, किसी किसी ने वैष्णव को तो उतार देते हैं ना एकदम, वो नहीं करते। और भगवान के धाम जाने के लिए क्या करना है? वैष्णव अपराधों से बचना है और भगवान का नाम लेना है। तो कितनी फेवरेबल कंडीशन है उन लोगों के लिए। कोई सुंदर है, भक्त है, लेकिन उसको सुंदरता का अगर गुरूर है तो मुसीबत है उसके लिए। चाहे बेशक 4 कॉम्प्लीमेंट मिलते हो उसको, लेकिन उसके लिए अनर्थ है ही। वो व्यक्ति खुश हो रहा है, वाह हूं तो मैं ही सबसे, मुझे बताया था कि मैं पूरे इस्कॉन में सबसे सुंदर हूं, अच्छा तो वो इसी ख्वाल में घूम रहे हो। समझ पा रहे बात को? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमारी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, महाप्रभु खुद इतने सुंदर थे कि जब उन्होंने सन्यास लेना चाहा और अपने बाल कटाने चाहे तो ना ही रोता रहा, इतने सुंदर बाल मेरे से मत कटाओ, मैं नहीं काटू, कहते रहे काटो भैया मेरे को सन्यास ले, नहीं मैं नहीं काट सकता, रो रहा था वो काटते काटते, उसके बाद उसने नाई का काम ही छोड़ दिया जिंदगी में, कहता उसके बाद कसे के नहीं काटे, इतने सुंदर तो थे। तो इस प्रकार की जो डिफिशियंसीज हैं या डिसेबिलिटीज हैं, ये अगर हमारे अंदर हैं तो इसको वरदान के रूप में देखना चाहिए, भगवान की योजनाओं के रूप में देखना चाहिए, और अपने लिए क्या मानना चाहिए कि हाँ अगर हमसे कोई आकर्षित नहीं हो रहा, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, या बहुत एजुकेटेड नहीं है, तो ठीक है ना। वो 18 साल पढ़कर उसने अनर्थ ही तो मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, हमने नहीं किया इतना, लेकिन हमें तो वो समय भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन जिसने किया और भक्त अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तब उसे नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कहा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इन सारे बाहरी आवरणों से इसको बचाओ और असली चीज पहचानो, क्या? दास दासानुदास। एक श्लोक ग्रंथों में आता है, प्रेर है एक्चुअली, मत जन्मना फलम इदम मधुकेट भारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एष इव तद भृत्य भृत्य परिचारिका भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मरण लोकनाथ। हे भगवान, उसमें बोल रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप मधु कैटअप इत्यादि का आपने वध किया है, मेरी आपसे केवल ये प्रार्थना है कि आप ऐसा अनुग्रह मुझ पर कीजिए कि मैं आपके दासों के दासों का भी दासों के दासों के दासों के दासों के दास, मतलब 6 बार दास लगाया उन्होंने, भृत्य का मतलब दास होता है, मतलब दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन सकूं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन दास की। तो प्रार्थना अगर करनी है, जैसे महाप्रभु कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा क्या अच्छा है, मेरी मत जन्म ईश्वरे भवतात भक्ति हेतु कितु, कि मेरी तो आजीवन जन्म हो जाना हो लेकिन आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त, वो कह रहे हैं पुनश्च भूयात् भगवन्ति अन्ते, अगर मेरा पुनः जन्म हो, अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो क्या हो, भगवन्ति अन्ते, जो अनंत कृष्ण है, अनंत भगवान, रति प्रसंगा तद आश्रयेषु। दो चीजें बोली, एक तो उन अनंत भगवान में मेरा सदैव क्या रहे, समर्पण बना रहे, उनकी भक्ति में लगा रहा हूं, चाहे कहीं भी हो जन्म, ठीक है। अगर मेरा पुराना दोबारा पुनर्जन्म होता है तो एक तो मेरी रति बनी रहे किसमें, अनंत भगवान में। दूसरा मांगा उन्होंने क्या वरदान, रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और फिर जो उन अनंत भगवान के जो दास हैं जिनके उनके चरणों में रति लगी हुई है, मेरी रति ऐसे भक्तों में हो, दो चीज मांगी। तीसरी चीज क्या मांग रहे हैं, महत्सुयाम याम योपयामी सर्व सृष्टि, और इस सृष्टि में जहां जहां पर भी महान भक्त हैं भगवान के, या जितने भी प्रकार के लोग हैं, उनसे एक चीज हो जाए मेरी मैत्रेयस्तु, उनसे मित्रता हो जाए, और जो भी इस पृथ्वी में आया है उन सारे लोगों से मेरी क्या हो जाए, मैत्र मित्र, सर्वत्र सबसे जितने भी जहां जहां पर भी हैं, नमो द्विजेभ्य, हे द्विज, हे ब्राह्मणों मुझे ऐसा वरदान। ये मेंटालिटी है भगवान भक्तों की। क्या क्या मांग लिया, एक अनंत भगवान जो है कृष्ण उनके प्रति क्या रहे, सदैव भक्ति बनी रहे, कभी भी कहीं भी जन्म हो उनकी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। दूसरा, हाँ, जो ऐसे अनंत भगवान श्री कृष्ण की के दास हैं जिनके जिन्होंने उनकी चरणों का आश्रय ले रखा है, ऐसे भक्तों के प्रति मेरी रति हो, उनका संग प्राप्त हो। और तीसरा, इस सृष्टि में जहां कहीं भी जो भी व्यक्ति है उनसे मेरा मित्रवत संबंध हो। तो इस प्रकार जो है भगवान के भक्त भगवान से ये याचना करते हैं। और आज के इस श्लोक के अनुसार अगर हमारे हृदय में कहीं पर इस प्रकार की इच्छा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस आखिरी इच्छा से। यह चैतन्य महाप्रभु का यह पूरा श्लोक है कि कहीं पर भी अगर हमें फील होता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, ये रह गया या वो रह गया, ऐसा होता या वैसा कर लेते, चलो इस जन्म में नहीं जो अगले जन्म में, सारे के सारे वेदों को तीन भागों में बांटा गया, तामसिक, रासिक, सात्विक, और उन बहुत सारे श्लोकों में या चीज़ों में केवल यही सब चीज़ें कि आप ऊंचे लोगों में कैसे जा सकते हैं। इसीलिए जो दान पुण्य भी व्यक्ति करता है तो उसके पीछे भाव ये रहता है कि चलो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, गलत ना हो, अच्छा जन्म हो जाए, अच्छा कुल मिल जाए, स्वर्ग में चला जाऊं, या फिर अगला अच्छा जन्म हो जाए। तो इसी चेतना से व्यक्ति करता है ये सब। पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो उद्देश्य हमारा, भक्तों का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि अगर उनको शारीरिक रूप से या स्टेटस वाइज, एजुकेशन वाइज, सोशली कहीं पर अगर इन्फीरियर फील होता है तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता, उसे वरदान समझें, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझें, उसे भगवान की कृपा समझें। क्यों? क्योंकि भौतिक आकर्षण इतने हैं या प्रकृति इतनी आकर्षित है आपकी तरफ कि कहीं ना कहीं वो भक्तों को भी डेविएट कर देती है। तो कभी कोई व्यक्ति बहुत धनी हो भक्त और वो ये कह रहा है तुम्हारे पास धन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात, नुकसान वाली बात नहीं है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रे, जिस भी विधि से रखा भगवान ने, जो भी हमारे साथ, और हमेशा भगवान का भजन करें, ये हमारी कामना होनी चाहिए। इसलिए पुनर्जन्म का तो सोचे ही ना, और अगर सोचे भी पुनश्च भूयात् भगवंती अंत्य, भगवान की ही चरण कमलों में हमारे रति रहे अगर जन्म हो, तो ऐसा भाव रहना चाहिए भक्तों का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, मैंने बताया ना हम तो शहरों में पैदा हुए हैं, इसलिए हम शायद इस जन्म वाले शब्द को इतना ना महत्व दे सके, इसलिए मुझे कुछ शब्द इस प्रकार के बोलने पड़े या भौतिक अनर्थों में उन चीज़ों को टच करना पड़ा जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारा अच्छा जन्म या ऊंचे लोकों में जाने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसलिए जितने भी कर्म मिश्रित भक्त हैं, अर्थात इच्छाओं के साथ जो भक्ति करते हैं, उनका हश्र किस रूप में होता है कि उनको देवलोक अर्थात स्वर्ग इत्यादि में जाना पड़ता है, और फिर वहां से उनको फिर दोबारा प्रार्थना करनी पड़ती है कि अगर दोबारा जन्म हो तो यहाँ इस पृथ्वी पर हो, क्योंकि गलती हो गई, समझाया भी था लेक्चर में, पूछ बताया भी था, पढ़े भी थे हमने, तो भी इच्छाएं रख ली। इसलिए ध्रुव महाराज अपने प्रसंग से ये बता रहे कि कभी इच्छा मत रखो भौतिक, भगवान की भक्ति करते हो। क्या करेंगी ये इच्छाएं? हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जड़ भरत महाराज को जब हिरण का शरीर मिला तो वो कस्तूरी नहीं ढूंढ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, आश्रम के बाहर केवल कथा सुन रहे थे। ब्राह्मण कुल में जब पैदा हुए तो अपने को जनेऊ पहनाकर वो ब्राह्मण का अहंकार में नहीं घूम रहे थे, वो जड़वत रहते थे ताकि अपना बिजनेस करें और आध्यात्मिक जगत में वापिस जाएं। या फिर अजामिल के केस में जब हमने लास्ट में बात की थी, अगर उसने उस कन्वर्सेशन को सुन भी लिया तो भगवान ने उसको दोबारा शक्ति दी, शरीर दिया, और ताकि वो अपनी भक्ति को पूरा कर वापस जा सके, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार हम लोगों को चाहिए कि अपने हृदय में चेक करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहीं हमारे अंदर तो इच्छा नहीं है कोई चीज़ देखकर या इन सब चीज़ों को देखकर, या किसी सुपीरियर या किसी धनी या किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर कि यार काश मैं ऐसा होता, या काश भगवान देखो मैं कब से भक्ति कर रहा हूँ, अब तो मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा कर दो, या भगवान नहीं होता है, अब तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी कर दो, कब से बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भक्त इस प्रकार की इच्छाएं कैरी करके चल रहे हैं साथ में तो वो नुकसान हो जाएगा। इच्छा तो पूरी हो जाएंगी लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिल सकता था। इसलिए ध्रुव महाराज ने प्रार्थनाएं करी भगवान से, क्षमा कर दो, कितना बेवकूफ था मैं, मैंने हीरे की जगह कांच के टुकड़ों से वो कर लिया एक्सचेंज ऑफर, और इच्छाएं रख ली मैंने। ये व्यक्ति को तब पता चलता है जब पूरी हो जाती हैं, तब वो अपने को कंडेम करता है, तब वो अपने को तिरस्कृत करता है कि क्या मांग लिया था मैंने, मैं कृष्ण प्रेम मांग सकता था लेकिन मैंने ये चीज़ कर ली। इसलिए इससे ऊंचा धन नहीं है, कृष्ण नाम से, कृष्ण प्रेम से ऊंचा धन नहीं है। ये केवल वही रियलाइज़ कर सकता है या वही व्यक्ति ऐसी कामना कर सकता है जो स्तर पर हो। इसलिए हम लोगों को महाप्रभु की इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा ताकि हम स्तर पर प्राप्त पहुँच सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और क्लास खत्म हो चुकी है, जो जाना चाहें जा सकते हैं। हाँ जी थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी वैदिक शास्त्रों को या भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक योग्यता चाहिए होती है, तो कई बार जब जिनमें योग्यता नहीं होती तो भगवान ऐसे लोगों को समझाने के लिए भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। तो अगर क्राइस्ट को भेजा क्रिश्चियनिटी बनाने के लिए तो वो भी भगवान के पुत्र थे, और मोहम्मद को भेजा तो वो भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, नानक देव जी को भेजा तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो अलग अलग समुदाय को अलग अलग मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार जितना वो समझ सकते हैं वही चीज़ दूसरे रूप में देते हैं ताकि वो उतना कर लें, उतना समझ लें और आगे बढ़ सकें।